प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में और भी बताते हैं नरसिंहदेव को कि एक माता पिता बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते, एक वैद्य या डॉक्टर मरीज को रक्षा नहीं कर सकते, और मैं एक नौका बोट डूबते हुए व्यक्ति को बचा सकता। सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण। हमें लगता है कि माता पिता बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, और माता पिता कर्तव्य भी है कि प्रयास करना, लेकिन कृष्ण ही है रक्षक। डॉक्टर का कर्तव्य है कि प्रयास करना पेशेंट को बचाने के लिए, दो कारण से, एक तो उसका कर्तव्य, दूसरा उसको धन भी कमाना है, तो उसका कर्तव्य है, लेकिन एक्चुअली डॉक्टर रक्षा नहीं कर, फिर कृष्ण। इसलिए सुप्रीम शेल्टर है वो कृष्ण के चरण कमल। समाश्रित पद प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम 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 यदि पदम न पेशम। ये भागवत का श्लोक है जिसमें बताया गया है कि कृष्ण के चरण कमल का जो आश्रय लेता है उसके लिए बहुत सागर, विशाल सागर इतना छोटा बन जाता है जितना गाय के बछड़े के पैरों में, पैरों के निशानों में जो पानी होता है। यह पावर कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने का। पदम पदम यदि पदम न पेशम, उस स्थान में पहुंचते हैं जहां पर कोई विपत्ति नहीं है। इस दुनिया में हर स्टेप पर खतरा है, हर क्षण खतरा है, हर क्षण खतरा है, लेकिन जिसने भगवान कृष्ण के चरणों को अपना सर्वस्व बना लिया है वो व्यक्ति आसानी से सब भय को पार कर ले। प्रहलाद महाराज को इस श्रद्धा थी, और फिर भगवान नरसिंहदेव ने कहा उनसे, कुछ तो मांगो प्रहलाद, मैं बहुत खुश हूं, मांगो, कुछ तो मांगो। प्रहलाद बोले, मेरे पिताजी श्रीमान हिरण्यकशिपु प्रभु, इन्होंने बहुत सारे अपराध किए थे आपके विरुद्ध या मेरे विरुद्ध, आप उनको क्षमा कर दीजिए, उनका उद्धार कर दीजिए। भगवान बोले, उद्धार हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बनता है तो उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अगर आप सच्चे दिल से हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और सच्चे दिल से हरि नाम लेते हैं तो आपके नाम जप से 21 जनरेशन का उद्धार हो जाए। कई बार लोग सोचते हैं कि जैसे यहाँ पर जो भक्त ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता की सेवा को त्याग कर यहाँ पर रह रहे हैं, ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, मातृ हे भव पितृ हे भव, माता पिता ही भगवान। वास्तव में अगर हम माता पिता की सेवा करें भौतिक रूप से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम माता पिता को आध्यात्मिक प्रगति कराने में मदद कर रहे हैं तो और भी अच्छा है। अभी अगर आप भक्ति पूर्ण रूप से नहीं करके, समझो कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा माता पिता को धन या कुछ भौतिक सुविधाएं दे सकते हैं, और वो भी एक माता पिता, माता पिता के माता पिता शायद ही होंगे, या माता पिता के पिता के पिता के पिता पंजोबा खापर पंजोबा, मतलब पता नहीं कौन से लोक में होंगे, भगवान करे अच्छी जगह में, उनको भरोसा नहीं, उनकी सेवा करना भी चाहे तो कहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट कहाँ भेजेंगे उनके लिए, वो पता नहीं। लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो अपने आप जहां भी आपके पूर्वज हैं सबका उद्धार हो रहा है। आप एक मंत्र जप कर रहे हैं उसका लाभ सबको मिल रहा है, इसलिए असली सेवा है। बाकी सेवा तो औपचारिक सेवा है, फॉर्मेलिटी है, असली सेवा है आध्यात्मिक सेवा। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, द प्रीचर्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस आर ट्रू वेलफेयर वर्कर ऑफ सोसाइटी। जो कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं, जो कृष्ण के पुस्तकें बांट रहे हैं, या कृष्ण का नाम प्रचार कर रहे हैं, या मंदिर निर्माण कर रहे हैं कृष्ण प्रचार के लिए, वो व्यक्ति वास्तव में समाज के हितकारी हैं। यही प्रहलाद महाराज का मूल है, प्रहलाद महाराज की भावना यही। ऐसी और एक महान भक्त हैं जिनका कल तिरुभाव दिवस था, जिनका नाम है परमेश्वरी दास ठाकुर। परमेश्वरी दास भी बहुत महान वैष्णव, आज से 500 साल पहले हुए। कृष्ण लीला में वो कृष्ण के सखा थे, जैसे कृष्ण लीला में बहुत सारे सखा थे, एक मधु मंगल थे, और वरुथाम भी कृष्ण के सखा का नाम है ना, और क्या नाम, सीदामा, शोक कृष्ण, अर्जुन, तक चित्रक पत्रक, उसमें से एक थे अर्जुन, भगवद गीता वाले अर्जुन नहीं, ये वृंदावन वाले अर्जुन। और वही अर्जुन गौर लीला में परमेश्वरी दास ठाकुर के रूप में आते हैं, बहुत पावरफुल वैष्णव होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं आप बंगाल जाओ, यहाँ पुरी में रहकर मेरे साथ क्या कर रहे, जाओ बंगाल में टीचिंग करो, प्रचार करो, लोगों का उद्धार करो, तो उनको असिस्टेंट के रूप में बहुत सारे वैष्णव देते हैं। उसमें से एक होते हैं गदाधर दास। गदाधर दास बहुत पावरफुल टीचर होते हैं। उनकी टेक्निक यहाँ अप्लाई करना मुश्किल है। कभी कभी सांपों को गोद में लेके उनको पीछिंग करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग ट्राई नहीं कर सकते, इन गलती से अगर सांप आ ही जाए तो ये कर सकते हैं। अगर भाग नहीं सके तो ये ट्राई कर सकते। और शेरों को भी, शेरों को गोद में लेके पीछिंग करते, और एक्चुअल प्लास्टिक के शेर नहीं, एक्चुअल। हमारे कुछ भक्त बेलगाम में थे और किसी ने कीर्तन के बीच में प्लास्टिक सांप डाला था, सब लोग भाग गए थे इधर उधर। अभी तक हम कभी तक उतने शुद्ध नहीं बने हैं। एक दो साल कुछ जन्मों के बाद हुआ था। और एक थे गदाधर दास, एक और गुण था। और रात के समय काजी के पास गए तो बेचारा काजी सोया हुआ था, और रात के समय उसके महल में गए, उसके कमरे में गए, उसके बिस्तर के पास गए, बोले काजी उठो। काजी बेचारा उठ गया। आप सो रहे हो, गौरंग नित्यानंद आए हैं, सब लोग हरि नाम ले रहे हैं आपको छोड़कर, आप अभी कृष्ण का नाम लो नहीं तो आपका सिर काट दूंगा। तो बेचारा काजी नींद थोड़ी खुली हो, बोला अभी नहीं, मैं कल से कृष्ण का नाम लूंगा। तो गदाधर दास बहुत प्रसन्न हो गए, बोलते आपने कृष्ण का नाम ले लिया, आपका जीवन सफल हो गया। तो गदाधर दास ऐसे अभिराम ठाकुर थे, वो भी नित्यानंद प्रभु के पार्षद। अभिराम ठाकुर के पास एक चाबुक था, इसका नाम था जय मंगल। कोई टीचर कोर्स नहीं, कोई ग्रुप प्रोग्राम नहीं, अभिराम ठाकुर के पास था। और जिसको भी मारते तो कृष्ण प्रेम मिलता, लेकिन एक और चीज थी अभिराम ठाकुर जिसको प्रणाम करते हैं। अगर किसी को प्रणाम करते, अगर वो व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं होता तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने बोला कि गेट पे से ही बुलाना है, दूसरे को चाबुक दे दे तो अच्छा। शालग्राम शिला, अगर कोई सच्ची शालग्राम शिला नहीं थी, कोई दगड़ रखा होता तो प्रणाम करते तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुकुंद के पुत्र थे रघुनंदन। तो मुकुंद ने अपने अपने घर में गोपीनाथ की रीति रखी थी, और गोपीनाथ को लड्डू भोग लगाते थे। एक दिन वो कहीं बाहर जा रहे थे तो पुत्र को बोला कि आप ऑफरिंग करना। तो रघुनंदन ने ऑफरिंग किए, और 10 मिनट या 15 मिनट होने के बाद जब पर्दा खोला देखा लड्डू वहीं पर है, रोने लगे, गोपीनाथ आप स्वीकार करो। गोपीनाथ बोले मैंने स्वीकार कर लिया, ये कहां से, लड्डू तो अभी भी दिख रहे मुझे। बोले नहीं मैंने आंखों से खाया। रघुनंदन बोले ये फिलोसफी मुझे समझ में नहीं आती, आंखों से आप स्वीकार करिए। भगवान ने उनकी खुशी के लिए बाह्य रूप से भी स्वीकार कर लिया, और प्लेट खाली प्लेट वापस लौट के। अगले दिन पिताजी आए, बोले रघुनंदन महाप्रसाद को क्या है। बोले महाप्रसाद कृष्ण ने खा लिया। कृष्ण ने खा लिया, लेकिन महाप्रसाद किधर है, कृष्ण तो वही खाते हैं, हम 20 साल से ऑफरिंग कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण ने खा लिया, कृष्ण ने खा लिया या कोई कुत्ते ने खा लिया या आपने खा लिया, फिर से ऑफरिंग करो। और रघुनंदन ने फिर से ऑफरिंग किया, और अभिराम ठाकुर सॉरी मुकुंद उसके पिताजी छिप कर देख रहे थे। उन्होंने देखा वास्तव में गोपीनाथ ने लड्डू खा लिया, और आधा लड्डू रखा है, आधा लड्डू रखा तो खुशी से दिखाने के लिए। मुकुंद बहुत प्रसन्न हुए रघुनंदन की भक्ति देखकर। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं मुकुंद तुम रघुनंदन के पिता हो या रघुनंदन तुम्हारे पिता हैं। जैसे हमारे ईशान ठाकुर को, ईशान ठाकुर को कहा, ईशान ठाकुर प्रभु जी है ना, कोई पूछे आप सामानंद के पिता हैं या सामानंद आपके पिता हैं, ऐसे कोई जवाब की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट अभी नहीं है, ये इससे कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन मुकुंद ने जवाब दिया, हालांकि मुकुंद पिता थे, बोले रघुनंदन मेरे पिता हैं और मैं उनका पुत्र हूँ, क्योंकि वो मुझे कृष्ण भक्ति में प्रेरणा दिए। महाप्रभु बहुत खुश हुए, सेटिस्फाइड हुए, बोले यस जो कृष्ण भक्ति में प्रेरणा दे वही गुरु है, वही माता है, वही पिता है। तो मुकुंद रघुनंदन की लीला को अभिराम ठाकुर ने सुना, अभिराम ठाकुर एक गांव में रहते, इसका नाम था खाना कूला कृष्णा नगर, आप याद रखना हमेशा, कभी जाने का अवसर मिले। एक खाना नदी है, उसके कुल के ऊपर एक नगर है, इसलिए उसका नाम है खाना कूला कृष्णा नगर। हमारे जो अभिराम ठाकुर जो बम्बई में थे, उन्होंने डेथ बैक किया कुछ साल पहले, वो जानते थे उस इलाके को, बंगाल से थे, इसलिए उनका नाम अभिराम ठाकुर रखा गया। अभिराम ठाकुर वहां से थे, थाना कुलर कृष्णा नगर, और उनको पता चला, वो बहुत प्रसन्न हो गए और वो मिलने आए रघुनंदन से। हम मुकुंद को मालूम था कि अभिराम ठाकुर प्रणाम करते हैं, उनको लगा अगर वो मेरे पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं, अब मान लो मेरे पुत्र में थोड़ी सी भी इच्छा हुई, भौतिक इच्छा, कुछ रसगुल्ला खाने की या स्वीट आइस खाने की, तो उसको कैसे, उसको प्रणाम करने से मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने पुत्र को छिपा दिया। अभिराम ठाकुर आए, बोले मुकुंद आपके पुत्र कहाँ पर हैं? मैंने सुना कि बहुत महान भक्त हैं, भगवान गोपीनाथ उनके ऑफरिंग को स्वीकार कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मुकुंद बोले, सहना कर दिया उन्होंने, तो बोले ठीक है मैं रुकता हूँ उनके लिए। तो थोड़ा समय बीत गया, रघुनंदन को कुछ पता नहीं था, स्वाभाविक रूप से बाहर आ गए। अभिराम ने देखा उनको, प्रणाम करने गए, उनके माता पिता डर रहे थे अभी क्या होगा, प्रार्थना करे थे भगवान से। जैसे ही अभिराम ठाकुर ने प्रणाम किया, रघुनंदन ने प्रणाम किया, रघुनंदन जीवित रहे, उनकी मृत्यु नहीं हुई, वास्तव में शुद्ध भक्त थे। अभिराम ठाकुर बहुत पावरफुल थे। एक बार तो नित्यानंद लोग के घर में गए, नित्यानंद लोग का विवाह हुआ, जाना हुआ वसुधा के साथ, और उनको एक लड़का हुआ, तो अभिराम ठाकुर को इन्वाइट किया सेरेमनी के लिए, क्या बोलते हैं महाराज ने बालसा ना, बालसा, तो उसको सेरेमनी के लिए इन्वाइट किया, और सारे बहुत सारे लोगों को बुलाया था। अभिराम ठाकुर भी आए और पूछा कहाँ पे आपका लाला। तो जब उनको पास में ले गए, अभिराम ठाकुर ने प्रणाम किया, आंखें खोले, फिर उठाया तो हरिभुवन बच्चे की मृत्यु हो गई। फिर कुछ साल बाद फिर से उनको पुत्र हुआ, अभिराम ठाकुर फिर से आ गए, फिर से प्रणाम किया और मृत्यु हो गई। अगली बार जानवा देवी ने बोला नित्यानंद प्रभु को, नो मोर इन्विटेशन, अभिराम ठाकुर को इन्विटेशन मत देना, अभिराम ठाकुर को इन्वाइट नहीं किया, उनको पुत्र हुआ। इस बार अभिराम ठाकुर आए नहीं, लेकिन किसी ने आज उनको बताया कि आप गए नहीं, आपको पता नहीं नित्यानंद प्रभु, आप नित्यानंद प्रभु के क्लोज एसोसिएट हैं, नित्यानंद प्रभु के घर में पुत्र हुआ है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मुझे इनवाइट नहीं किया। आप तो उनके परिवार के सदस्य जैसे, आप तो निमंत्रण की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही जाओ। अभिराम ठाकुर निकले गंगा के किनारे, नदी पार करने के लिए नौका ढूंढ रहे थे, दो तीन नाविक मिले, उन्होंने बोला मुझे ले जाओ। आप कौन हो? मैं कौन हूँ, क्यों पूछ रहे हो? मैं कौन, मुझे ले जाओ, मैं पैसे दूंगा। नहीं हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है कि आप अभिराम ठाकुर तो नहीं हो, क्योंकि हमको नित्यानंद प्रभु ने पहले से ही बताया है कि अभिराम ठाकुर को मत लेकर आना, और हमको पैसे दे दिए नहीं लाने के लिए। ऐसा क्या करूं, समझ गए, उन्होंने अपने नौका में पानी भर दिया, जिससे वो आदमी चला। उसमें अभिराम ठाकुर मिस्टिक योगी भी थे, उन्होंने अपनी सिर की पगड़ी निकाली, कपड़े को पानी में रखा और उस पर बैठ गए, तैरते हुए चले गए। उनके जो कपड़े थे वही नौका बन गए। वहां पर पहुंचे, नित्यानंद ने देखा तो दौड़ते गए ब्लेड से ही, हरि बोल यहीं से, अब यहीं से आशीर्वाद देता हूँ। जब अभिराम ठाकुर ने बताया कि इस समय जो आपको पुत्र हुए तो महाविष्णु के अवतार है, महाविष्णु के अवतार है, इसलिए आप चिंता मत करो। तो उन्होंने प्रणाम किया और पुत्र जीवित रहे, और उनका नाम रखा गया वीरभद्र या वीरचंद्र। तो अभिराम ठाकुर की पोटेंसी, और परमेश्वरी दास भी उनकी तरह, और ये सब कीर्तन करते हुए निकले बंगाल की ओर। उस समय कोई ट्रेन नहीं थे, पैदल जा रहे थे, एक महीना लग गया उनको पहुंचने में, एक महीने से भी ज्यादा, क्योंकि रास्ते में रुक जाते कभी कभी, कीर्तन जब अच्छा होता बस कीर्तन करते रहते, उसमें से एक कृष्ण बन जाता, हाथ में मुरली लेके रोड पे खड़े रहते 9 घंटे तक, 9 घंटे तक हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और किसी रास्ता पूछते कि बंगाल का रास्ता आता है, बोलते हाय हाय आप तो गलत आ गए, 9 घंटे इधर जाना होगा। पीछे की तरफ जाते हैं, पूछते हैं कि बंगाल का रास्ता क्या है, बोलते हाय हाय आप तो गलत आ गए, 6 घंटे इधर जाना होगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भारत में कम से कम 3 लोगों से रास्ता पूछना चाहिए। इस तरह से वो कीर्तन, कभी कभी वो कीर्तन करते करते पेड़ के ऊपर जंप करते, बोलते मैं अंगद हूँ रामलीला में अंगद हूँ, और कभी कभी 15, 20, 30, 40, 100, 200 भक्त एक ही पेड़ पे चढ़ जाते और पेड़ की डाली टूटती भी नहीं। मिस्टिक पोटेंशियल। परमेश्वरी दास ठाकुर भी उस ग्रुप में थे और बाद में वो अपने आप से टीचिंग करने लगे बंगाल में कुछ भक्तों को साथ में लेकर। और एक बहुत ही गंदा व्यक्ति था, क्रूर व्यक्ति, उसको ईर्ष्या होने लगी, ये लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो उसने एक मरा हुआ कोल्हा, मरा कोल्हा बोलते हैं जैकल को, एक मरा हुआ जानवर लेके कीर्तन के बीच में फेंक दिया जिससे सबका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, कीर्तन में बाधा आ जाए। लेकिन परमेश्वर दास ठाकुर बोले वो जिसका आप घबराओ मत, कीर्तन करते रहो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम, सब कीर्तन करते रहो। उतने में क्या हुआ, वो कोला भी जीवित हो गया, वो मरा हुआ कोला अपने कोलाइन वॉइस से गाने लगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, वो भी जीवित हो गया। ये भगवान के नाम की महिमा है। ऐसे ही तब श्रीनिवास आचार्य का भी आविर्भाव दिवस था। श्रीनिवास आचार्य की महिमा करने वर्णन करने के लिए क्या हमारी योग्यता है। एक चींटी कैसे एक विशाल हाथी के बारे में कुछ बोल भी सके, लेकिन जो थोड़ा सा मैंने सुना है बुक्स में मैं बता रहा हूँ। श्रीनिवास आचार्य के उनके पिताजी का नाम था गंगादास भट्टाचार्य। एक्चुअली गंगादास भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज एसोसिएट थे, उनके प्रिय भक्त थे। वो रहते थे गांव में जिसका नाम है श्रीखंड, और वो श्रीखंड से नवद्वीप जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने। उस समय की बात है, आज से 500 साल पहले, जब चैतन्य महाप्रभु धरती पे थे और जा रहे थे, और रास्ते में वो कटवा पहुंचे। कटवा आप जानते हैं वो स्थान है जहां पर महाप्रभु का केश मुंडन हुआ था, जहां पर उन्होंने संन्यास लिया था। उन लोगों से पूछा क्या बात है, इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या रो रहे हैं सब लोग, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हो रहा है। हमने देखा केशव भारती ने अपने हाथों से अपने मुख से चैतन्य महाप्रभु को नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य। तो गंगादास भट्टाचार्य ने नाम सुना तो उनके मुख से एक ही आवाज निकल रही थी, श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण। तो पूछा आप कहाँ जा रहे हो, क्या समय हुआ है, प्रसाद क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य। और भक्तों ने उनका नाम रखा चैतन्य दास, उस दिन उनका नाम हो गया चैतन्य दास। चैतन्य दास अपने गांव में लौट कर आ गए और एक दिन वो जगन्नाथपुरी गए महाप्रभु से मिलने, और बोले हमारे मन में इच्छा हो रही है एक पुत्र प्राप्त करने की। महाप्रभु बोले कि आप मेरे को मालूम है आपकी इच्छा, और मेरे एक आवेश मेरे एक बहुत विशेष भक्त प्रकट होंगे जो रूप और सनातन जी ने पुस्तकें लिखी हैं वो बांटी जाएंगे इनके द्वारा। तो फिर उनको पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया श्रीनिवास आचार्य। महिमा आजाद है, समय कम है, मैं आज कुछ नहीं बताऊंगा। सिर्फ किसी दिन पिछले पुणे यात्रा में आपको याद होगा 2006 में श्री थोड़ी ने राधानाथ स्वामी महाराज ने करीब 5 घंटे बोला, मेरे पास बहुत कम समय है, मैं फिर कभी बताऊंगा। मैंने नोट्स भी नहीं बनाए आज, ये याद भी नहीं है। लेकिन श्रीनिवास आचार्य में इतनी शक्ति थी कि जब पुस्तकें चोरी भी हो गई थी उन्होंने राजा को भक्त बनाकर उसे पुस्तकें वापस प्राप्त कर ली। श्रीनिवास आचार्य जीव गोस्वामी के अंदर ज्ञान ग्रहण करते हैं और बाद में वो सब जगह पर प्रचार करते हैं। ऐसे ही कल राधारमण देव का भी आविर्भाव दिवस था। गोपाल भट्ट प्राण धन है, आप जानते हैं महाप्रभु के प्रिय पार्षदों में से एक हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत क्लोज एसोसिएट है। इनके पिताजी का नाम था वेंकट भट्ट और इनके चाचा का नाम था तिरुमल भट्ट और एक और चाचे का नाम था प्रबोधानंद सरस्वती। तो वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी जब महाप्रभु श्रीरंगम में आए थे तो अपने हाथों से गोपाल भट्ट उनके पैर मसाज करते उनकी सेवा करते थे, और बाद में महाप्रभु उनको आदेश दिया कि तुम वृंदावन आना अपने माता पिता के मृत्यु के बाद। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में रहने लगे, वे रूप और सनातन के निर्देशन में कार्य कर रहे थे उनके संग में। और रूप गोस्वामी के पास विग्रह थे राधा गोविंद, सनातन गोस्वामी का विग्रह थे राधा मदन मोहन। एक दिन एक व्यापारी आया और वो सब गोस्वामी को कपड़े दे रहे थे डीटीज के लिए, विग्रह के लिए वस्त्र दे रहे थे। तो गोपाल भट्ट सोचने लगे मेरे पास कोई विग्रह नहीं है, उनके पास कुछ शिलाएं थे, शालिग्राम शिला, और उस शिलाओं को ही पूजा करते थे। तो सोच रहे थे अरे मेरे पास भगवान के ड्यूटीज होते हैं बहुत अच्छे। नरसिंह चतुर्दशी के दिन रात के समय वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, आज के दिन आप इस खंभे से प्रकट हुए, ऐसे अगर आप चाहें तो आप शिला से प्रकट हो सकते हैं। और ऐसे प्रार्थना करते हुए जब उन्होंने विश्राम किया तो उन्होंने देखा जो 12 शिलाओं में से एक शिला थी जिसका नाम था दामोदर, वो शिला में से भगवान का सुंदर रूप प्रकट हुआ। इतना छोटा, करीब 12 इंच ऊंचा, बहुत सुंदर। उन्होंने भक्तों को दिखाया तो वो रूप सनातन लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी सब इतने प्रसन्न हुए, सब कहने लगे इनके चरण कमल मदन मोहन जैसे, इनका वक्ष स्थल गोविंद देव जैसा और इनका मुख जो है गोपीनाथ जैसे है। और क्योंकि ये रासलीला के स्थान से प्रकट हुए जहां पर श्याम सुंदर ने श्रीमती राधिका के साथ रासलीला की थी, इसलिए इनका नाम होगा राधा रमन। तो कल वो दिन था जब राधा रमन प्रकट हुए। कहा कि राधा रमन मंदिर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक है, श्री प्रभुपाद हमेशा इस मंदिर की स्तुति करते थे। और वे कहते थे जब मेरे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ब्रज में प्रचार कर रहे थे तो कई व्यक्तियों ने अपने मंदिर बंद कर दिए थे, उनको अंदर नहीं आने दिया इस डर से कि वो सत्य बताएंगे, स्मारक ब्राह्मणों का विरोध करेंगे। लेकिन राधा रमन के पुजारियों ने उनका स्वागत किया था, इसलिए हमारे राधा रमन बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही सुंदर भी है। और एक विशेष चीज है कि बाकी सब जो विग्रह हैं, जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो पुजारी विग्रह को लेकर जयपुर चले गए, राधा रमन बहुत छोटे हैं इसलिए उसको एक छोटे से कबर्ड में ही छुपा के रखा गया। तो मूल मूर्ति अभी भी वृंदावन में है, क्योंकि मदन मोहन गोविंद देव गोपीनाथ सब अलग अलग जगह पे चले गए, लेकिन राधा रमन अभी भी वृंदावन में है। लास्ट में मैं माधवेंद्र पुरी के बारे में बोलना चाहूंगा जो कि हमारी परंपरा में महान आचार्य हैं, ईश्वरपुरी के गुरु चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी से हम क्या सीख सकते हैं, परम विरक्त टोटल डिटैचमेंट, और अनासक्त थे भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर, हमेशा कीर्तन करते रहते हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, सब समय कीर्तन करते रहते और वो अजगर वृत्ति का पालन करते। माधवेंद्र पुरी किचन तो था ही नहीं उनके पास, और कोई बर्तन नहीं थे, और भिक्षा भी नहीं मांगते थे, सन्यासी वगैरह भिक्षा मांगना अपने वस्त्रों में कुछ मिल जाए स्वीकार करना, सच्चे वो इतने ऊंचे स्तर पे थे। अयाचक वृत्ति अजगर वृत्ति, जैसे अजगर लेटा होता है और जो भोजन मिल जाए वो स्वीकार करता है, ऐसे उनकी वृत्ति थी, टोटल डिटैचमेंट। और तीसरा गुण उनका कि भगवान की सेवा के लिए कष्ट सहन करना। आप देखोगे इस कथा में कैसे वो भगवान के चंदन लाने के लिए वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाते हैं, उसके बारे में ट्रेन भी नहीं थे, पैदल जा रहे थे, पर्वत नदी और सब कठिनाइयों को सहन करते हुए। तुम्हारे सेवा पे जई पे दुख तई थे परम सुख, उन्होंने ठाकुर जो बोलते हैं उसके ज्वलंत उदाहरण श्री माधवेंद्र पुरी है। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि माधवेंद्र पुरी कल्पवृक्ष के अवतार हैं, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से प्रकट हुए गोलोक वृंदावन से, भक्ति के जड़ वही है और भक्ति के तन क्या बनाते हैं, तन तना भी जो बीच वाला भाग है वो भी माधवेंद्र पुरी है। जो भी आप ये राधा कृष्ण की पूजा देखते हैं वो माधवेंद्र पुरी से शुरू हुई है। तो माधवेंद्र पुरी एक बार भ्रमण करते करते वृंदावन में आए और वृंदावन में घूमते घूमते गोवर्धन में आए और वहां पर गोविंद कुंज के पास वो बैठे थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं था कुछ पिया नहीं था कई दिनों से। एक छोटा सा बालक आया और बोला माधवेंद्र पुरी ये लो दूध लो, पूछा आपको कैसे मालूम। वो बालक बोलने लगा इस गांव में कोई भूखा नहीं रहता, जो नहीं मांगता उसके लिए मैं लेकर आता हूँ, आप ग्रहण करिए मैं थोड़ी देर में लौट के आ रहा हूँ बर्तन लेने के लिए। माधवेंद्र पुरी देख रहे थे कि इस बालक के बातचीत इनके रूप को देखने से और बात सुनने से उनके सारे भूख प्यास सब नष्ट हो रही थी। उन्होंने उस दूध को पान किया और इंतजार कर रहे थे उस बालक के लिए, लेकिन बालक लौट कर नहीं आया। और विश्राम करने लगे, भगवान का नाम लेते हुए विश्राम कर रहे थे, उनको एक स्वप्न आया और स्वप्न में वो बालक फिर से आया और उनका हाथ पकड़कर कहने लगा, माधवेंद्रपुरी चलो चलो मेरे साथ, इस कुंज में मुझे छिपाया गया है, मैं जमीन के अंदर हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे को बहुत गर्मी महसूस हो रही है, अब मुझे बरसात सहन करना पड़ रहा है, मुझे बाहर निकालो। जैसे माधवेंद्रपुरी की नींद खुली वो पश्चाताप करने लगे कि ये बालक स्वयं कृष्ण थे, मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा है। तो उन्होंने गांव के लोगों को लेकर कुल्हाड़ी के साथ खुदाई शुरू की और उसमें से भगवान गोपाल जी का वो विग्रह प्रकट हुआ जो आजकल नाथद्वारा में है और उसी का एक रूप राधा गोपीनाथ मंदिर में चौपाटी में है। उस गोपाल जी की मूर्ति को उन्होंने स्थापना की, उनके पास पैसे नहीं थे, सिंपल ऑल्टर रखा, एक पत्थर उसके पीछे और एक पत्थर, उसका अभिषेक शुरू किया, 900 मटके पानी ले आकर गोविंद कुंड से भगवान का अभिषेक करने लगे। उसके बाद फिर पंचगव्य, पंचगव्य यानी दूध दही और घी और गोबर और गोमूत्र भगवान की सेवा में अर्पण किया। ऐसे ही पंचामृत है, दूध दही घी शहद और शक्कर। उसके बाद भगवान को वस्त्र पहनाया गया, उसके बाद भगवान को भोग लगाया गया और इतने सारे आइटम, पर्वत चावल के, चपातियों का पूरा पर्वत और इतने सारे मिष्ठान, करीब 10 ब्राह्मण से सब्जियां बनाने के लिए। और भगवान अपने भक्त की ऑफरिंग का हमेशा स्वीकार करते हैं। गोपाल जी ने एक क्षण में सबको स्वीकार कर लिया, लेकिन निराश होने की बात नहीं, फिर सब कुछ आ गया, सब कुछ प्रसाद ऐसे ही आ गया। और माधवेंद्रपुरी ने भगवान की शैया की व्यवस्था की, उनके लिए बिस्तर और फिर ये प्रसाद सबको बांटा गया, ब्राह्मणों को, शूद्रों को, पुरुषों को, स्त्रियों को, बच्चों को, सब प्रसाद खा रहे थे। दारे थे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधवेंद्रपुर ने सबको प्रसाद बांटने के बाद स्वयं थोड़ा सा दूध ग्रहण किया। दूसरे पुजारी थोड़ा अलग है, दूसरे पुजारी अपने लिए कुछ रखते हैं और बाद में बैठते हैं, लेकिन माधवेंद्रपुर तो कंप्लीटली प्योर थे। दो ब्राह्मण बंगाल से आए और बोले, हम सेवा करना चाहते हैं। माधवेंद्रपुर उनको दीक्षा दी और वो गोपाल जी की सेवा करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद भगवान फिर से स्वप्न में, माधवेंद्रपुरी मोरा ताप नहीं गेला, मेरी गर्मी दूर नहीं हुई, जाओ अब मलाई चंदन ले आओ, अब जाओ जगन्नाथपुरी और मेरे लिए चंदन लेकर आओ। माधवेंद्रपुरी उठे, उन्होंने पुजारियों को सेवा सौंपी और स्वयं निकल पड़े बिना किसी विचार के। पर्सनल कन्वीनियंस या इनकन्वीनियंस नहीं देख रहे थे, व्यक्तिगत सुख या दुख, उसी में निकल पड़े भगवान की सेवा के लिए। भ्रमण करते करते वो रेमुना में पहुंचे और वहां पर गोपीनाथ का बहुत सुंदर विग्रह है। वो देख रहे थे भगवान को, बहुत सारी चीजें भोग लग रही थी, उन्हें सोचा या पता लगाओ यहाँ पर क्या भोग लग रहा है, इसलिए नहीं कि मेरे को एक घंटे भर क्या मिलेगा, वो इसे सोच रहे थे कि जैसे जो भगवान को यहाँ भोग लग रहा है वही चीजें मैं भगवान गोपाल जी को लगा सकता हूँ वृंदावन में। पुजारी ने बताया कि यहाँ पर भगवान को एक विशेष चीज भोग लगती है, एक खीर जिसका नाम है अमृत केली, ये अमृत के समान स्वादिष्ट है, इसे उसको बोलते हैं अमृत केली। माधवेंद्र पुरी सोचने लगे, अगर मैं ये खीर को थोड़ा सा टेस्ट करूं तो वैसी खीर मैं गोपाल जी के लिए बना सकता हूँ। लेकिन फिर सोचने लगे, भगवान को भोग लग रहा है, मैं भगवान को भोग लगने से पहले ही, आरती होने से पहले ही मैं स्वयं खाने की सोच रहा हूँ, धिक्कार है, आई एम कंडम, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है कि दोष नहीं होने पर भी दोषी मानना। और वो निकल पड़े दूर गांव में, सॉरी मार्केट के पास जाकर विश्राम करने लगे। पुजारी जब रात को विश्राम कर रहे थे, उनको एक स्वप्न आया और सपने गोपीनाथ बोले, उठो तुम्हें पता नहीं है लेकिन पर्दे के पीछे मैंने एक मटका खीर छिपा के रखा है, आप ये लेकर जाओ और मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी को दो। पुजारी को आश्चर्य हुआ, वो नींद से उठे, उन्होंने स्नान किया, लेकिन मटका देखा उनको आश्चर्य हुआ, ये मटका कैसे रह गया। और फिर वो मटके को लेकर गांव में पुकारने लगे, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी कहाँ पर हो, आपके लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर चुराई है। ಪುರಿ ನಾಗೆ ಕ್ಷೀರ ಕೈಲ ಚೂರಿ ಅತೇವ ನಾಮ ಐಲೋ ಕ್ಷೀರ ಚೋರ ಹರಿ. ಭಗವಂತ ನಾಮ ಹೋಗಿ ಅಖೀರ್ ಚೋರ್ ಹರಿ, ಅಖೀರ್ ಚೋರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್. ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಕೋ ಮಟ್ಕಾ ದಿಯಾ ಖೀರ್ ಕಾ, ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಉನ್ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕಿಯಾ. ಅಪ್ಪ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಖೀರ್ ಕೋ ಭೀ ಖಾತೆ ಹೋ, ಖೀರ್ ಇತನಾ ಅಚ್ಛಾ ಥಾ, ಖೀರ್ ಕೋ ಖಾನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಬರ್ತನ್ ಕೋ ಭೀ ಮಿಟ್ಟಿ ಕೆ ಬರ್ತನ್ ಕೋ ಟುಕಡೆ ಟುಕಡೆ ಕರಕೆ ಅಪನೆ ಕಪಡೆ ಮೇ ಬಾಂಧ್ ಕೆ ರೋಜ್ ಥೋಡಾ ಥೋಡಾ ಖಾತೆ ಥೆ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಉಸ್ ಬರ್ತನ್ ಮೇ ಖೀರ್ ರಹಿ ಥಿ, ಇಸ್ಲಿಯೆ ರೋಜ್ ಥೋಡಾ ಥೋಡಾ ಖಾತೆ ಥೆ. ಅಪ್ಪ ಸೋಚನೆ ಲಗೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ರಹನಾ ಠೀಕ್ ನಹೀ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಬ್ಕೋ ಪತಾ ಚಲ್ ಜಾಯೆಗಾ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಮೇರೆ ಲಿಯೆ ಖೀರ್ ಚುರಾಯಾ ಹೈ. ಮಾನ್ ಲೋ ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಯಾ ಮೇರೆ ಲಿಯೆ ಭಗವಾನ್ ಕೋಯಿ ಚೀಜ ಚುರಾತೆ ಹೈ ಯಾ ಕೋಯಿ ಫೇವರ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ತೋ ಹಮ್ ಚಾಹೆಂಗೇ ಕಿ ಸಬ್ಕೋ ಪತಾ ಚಲೇ, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಕಿಯಾ ಜಾಯೆ. ಲೇಕಿನ್ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸೇ ದೂರ್ ಭಾಗನಾ ಚಾಹತೆ ಥೆ, ವೋ ಬಿನಾ ಕಿಸಿ ಕೋ ಬತಾಯೆ ಹುವಾ ಅಕೇಲೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ ಪಹುಂಚೆ, ಔರ್ ವಹಾಂ ಪರ್ ಭೀ ಯೇ ಪುಜಾರಿ ಥೆ, ಉನ್ಕೋ ಸಮಾಚಾರ ಮಿಲ್ ಗಯಾ ಥಾ. ವೋ ಪುಜಾರಿ ನೇ ಉನ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಬೋಲೆ ಹೈ ಆಪ್ಕಿ ಕ್ಯಾ ಸೇವಾ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ. ಜಬ್ ಭಕ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ನಹೀಂ ಭೀ ಚಾಹತೆ ತೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಉಸ್ಕೆ ಪೀಛೆ ಆತಿ ಹೈ, ತೋ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಸೇವಾ ಮೇ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಭಕ್ತ ಧನ ನಹೀಂ ಭೀ ಚಾಹತೆ, ಕಭಿ ಕಭಿ ಧನ ಆ ಜಾತಾ ಹೈ, ತೋ ಧನ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಭೀ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಸೇವಾ ಮೇ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ನೇ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರ ಕೆ ಜೊ ಪುಜಾರಿ ಥೆ ಉನ್ಸೆ ನಿವೇದನ್ ಕಿಯಾ, ಅಗರ್ ಆಪ್ನೇ ಮದದ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೋ ತೋ ಮುಜೆ ಚಂದನ್ ದೋ. ಔರ್ ಪುಜಾರಿ ನೇ 40 ಕಿಲೋ ಚಂದನ್ ದಿಯಾ ಹಮ್ಕೋ, ಔರ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಕುಛ್ ಕಪೂರ್ ಭೀ ಔರ್ ಏಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಔರ್ ಏಕ್ ನೌಕರ್ ಸಾಥ್ ಮೇ ಭೇಜಾ, ಔರ್ ಆಪ್ನೇ ಉನ್ಕೋ ಕಾಗಜಾತ್ ದಿಯೆ ಜಿಸ್ಸೆ ಉನ್ಕೋ ಕೋಯಿ ತಕ್ಲೀಫ್ ನಹೀಂ ಹೋ. ಚೆಕಿಂಗ್ ಹೈ ಜೈಸೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜಕಾತ್ ಮಾತಾ ಹೈ ನಾ, ಏಕ್ ಬಾರ್ ಮುಜೆ ಯಾದ್ ಹೈ ಜಬ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ ರಹೇ ಥೆ ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ್ ರೋಕ್ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಥಾ, ತೋ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ವೋ ನಿಕಲ್ ಪಡೆ. ಅಬ್ ಫಿರ್ ವೋ ರೇಮುನಾ ಆಯೆ, ಇಸ್ ಬಾರ್ ಪುಜಾರಿ ಇನ್ಕೋ ದೇಖ್ತೆ ಹೀ ಬಿನಾ ಮಾಂಗೆ ಖೀರ್ ಲಾ ಕೆ ದಿಯಾ. ಔರ್ ಜಬ್ ರಾತ್ ಕೋ ವಿಶ್ರಾಮ ಕರ್ ರಹೇ ಥೆ ರೇಮುನಾ ಮೇ, ಭಗವಾನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಜೀ ಫಿರ್ ಸೇ ಆಯೆ, ಬೋಲೆ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಆಪ್ ಯೇ ಮೇರೆ ಲಿಯೆ ಚಂದನ್ ಲೇ ಆ ರಹೇ ವೃಂದಾವನ್, ಇತನಾ ಕಷ್ಟ ಹೋಗಾ ಆಪ್ಕೋ ಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಆಪ್ ಯೇ ಚಂದನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕೋ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ ದೋ. ಮೇರೆ ಮೇ ಔರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಅಂತರ್ ನಹೀಂ ಹೈ, ಇಸ್ಲಿಯೆ ಆಪ್ ಯೇ ಖೀರ್ ಜೋ ಹೈ ಅಥವಾ ಚಂದನ್ ಜೋ ಹೈ ಔರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕೋ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ ದೋ. ಔರ್ ಅಮೃತ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಖೀರ್ ವಹಾಂ ಕಿ ನಹೀಂ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಜೋ ಕಿ ಹಮ್ ಪ್ರವಚನ್ ಮೇ ಬೋಲ್ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ಯಹಾಂ ರಾಧಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹೈ, ಖೀರ್ ಚೋರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸೇ ಅಭಿನ್ನ ಹೈ, ತೋ ಉಸ್ ಯೇ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಔರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ದೋನೋ ಏಕ್ ಹೀ ಹೈ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಿ ಫೋಟೋ ಯಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಯಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹೃದಯ ಮೇ ಸಬ್ ಏಕ್ ಹೈ, ಇಸ್ಲಿಯೆ ಆಜ್ ಹಮೇ ವಹೀ ಖೀರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಗಿ. ಫಿರ್ ಚಲಿಯೆ ಸಕ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೋ ಲೇಕಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೋ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಯೇ ಚಂದನ್ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಮುಜೆ ಹೀ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ ದೋ, ಸಾರಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕೋ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ ದೋ, ಸಾರಿ ಸರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ಜೀ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ವೃಂದಾವನ್ ಲಾನೆ ಕಿ ಜರೂರತ್ ನಹೀಂ, ಆಪ್ ಯಹೀಂ ಪರ್ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ ದೋ. ತೋ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಉಠತೆ ಹೈ ಔರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕೆ ಪುಜಾರಿ ಕೋ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಭೀ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಚಂದನ್ ಹೈ ಜೋ ಮೇ ಲೇ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ ಅಭೀ, ಅಭೀ ಚಂದನ್ ಕೋ ಯಹೀಂ ಪೆ ಘಿಸ್ ದೋ, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕೋ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ ದೋ. ಔರ್ ವೋ ಪುಜಾರಿ ಇತನೆ ಖುಷ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ, ತೋ ಅಪ್ನೆ ಔರ್ ದೋ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ದೇತೆ ಹೈ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿ ಸೇ ದೋ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯೆ ಥೆ, ತೋ ಚಾರ್ ಭಕ್ತ ಮಿಲ್ ಕರ್ ಔರ್ ಥೆ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಭೀ ಚಂದನ್ ಘಿಸ್ನೆ ಲಗತೆ ಹೈ, ಔರ್ ಜಿತ್ನೆ ದಿನ ತಕ್ ಚಂದನ್ ಹೋತ ಘಿಸ್ತೆ ರಹತೆ ಹೈ, ಔರ್ ರೋಜ್ ಭಗವಾನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕೋ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಔರ್ ಫಿರ್ ವಾಪಸ್ ವೃಂದಾವನ್ ಲೌಟ್ತಾ ಹೈ. ತೋ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯೇ ಕಹಾನಿ ಬತಾತೆ ಹೈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕೋ ಸಬ್ ಭಕ್ತೋ ಕೋ, ಔರ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಕೆ ಸಮಾನ್ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಕೋಯಿ ನಹೀಂ ಹೈ, ಜಿಸ್ನೇ ಜಿಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಖೀರ್ ಚೋರಿ ಥಿ, ಹಮಾರೆ ಮೇ ಸೇ ಕೋಯಿ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಖೀರ್ ಚೋರಿ ಥಿ, ಇಸ್ಲಿಯೆ ಹಮೇ ಸ್ವಯಂ ಚೋರಿ ಕರ್ನಿ ಹೈ, ಚೋರಿ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಅಲಗ್ ತರೀಕಾ ಹೈ, ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇ ಚೋರಿ ಕರ್ನಾ ಯಾ ಬೋಲ್ ಕೆ ಚೋರಿ ಕರ್ನಾ ಯಾ ಪುಜಾರಿ ರೂಮ್ ಮೇ ಕರ್ನಾ ಯಾ ಬಾಹರ್ ಕರ್ನಾ, ಹಮ್ ನಕಲ್ ನಹೀಂ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ. ಲೇಕಿನ್ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಕಿತನಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಥಾ, ಭಗವಾನ್ ತೀನ್ ಬಾರ್ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇ ಆಯೆ, ಆಪ್ ಯಾದ ಹೈ ತೀನ್ ಬಾರ್ ಕೈಸೆ ಆಯೆ, ಪಹಿಲಿ ಬಾರ್ ಜಬಿ ವೋ ಝಾಡಿಯೋ ಮೇ ಥಿ, ಯಸ್ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಬೋಲಾ ಕಿ ಮೇರೇ ಝಾಡಿಯೋ ಸೇ ನಿಕಾಲೋ, ಔರ್ ದೂಸ್ರಿ ಬಾರ್ ಚಂದನ್ ಲೇಕರ್ ಆಓ, ಔರ್ ತೀಸ್ರಿ ಬಾರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕೋ ಅರ್ಪಣ ಕರ್, ಔರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭೀ ಆಯೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಭಿ ಆಯೆ ಜಬ್ ವೋ ದೂಧ್ ಲೇಕರ್ ಆಯೆ. ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಕೆ ಸಮಾನ್ ಕೋಯಿ ಭಕ್ತ ನಹೀಂ ಹೈ, ನಾ ಭಾಗ್ಯಶ್ ಹೈ. ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಕೋ ಯಾದ್ ಕರ್ತೆ ಹಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಮಿಲ್ ಜಾತೆ, ಇತನೆ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ. ಔರ್ ಅಂತ ಮೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ, ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಜಬ್ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ ರಹೇ ಥೆ ತೋ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಶ್ಲೋಕ ಬೋಲಾ, ಮೇ ಓ ಶ್ಲೋಕ ಕಹಕರ್ ಅಂತ ಕರುಂಗಾ, ಸಮಯ ಹೋ ಗಯಾ. ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಜಬ್ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ ರಹೇ ಥೆ ವೋ ಏಕ್ ಶ್ಲೋಕ ಬೋಲ್ ರಹೇ ಥೆ, ಔರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಸಾರೇ ಮಣಿಯೋ ಮೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿ ಹೋತಿ ಹೈ, ವೈಸೆ ಸಾರೇ ಶ್ಲೋಕೋ ಮೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೈ. जैसे घिसने से चंदन की सुगंध, चंदन बढ़ जाता है, सुगंध बढ़ जाती है, वैसे जितना भी श्लोक के ऊपर मनन किया जाए उतना ही इसका गहराई अर्थ हमें समझ में आता है। ये श्लोक स्वयं राधा रानी ने बोला था जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और कुछ वर्षों के बाद उद्धव जी संदेश लेकर आए, तब कृष्ण के विरह में श्रीमती राधिका अपने प्राणनाथ के लिए ये श्लोक बोल रहे थे, राधा रानी ने बोला और माधवेंद्रपुरी बोलते थे, और तीसरा चैतन्य महाप्रभु, चौथा कोई व्यक्ति श्लोक जानता ही नहीं था। और वो श्लोक है, ऐ दीन दयाग्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से विदयम त्वद लोक कातरम दयित भ्राम्यति किंकरो यमहम। अनुवाद करते हैं श्री प्रभुपाद, हे प्रभु हे दीननाथ, कृष्ण का नाम है दीननाथ क्योंकि राधा रानी इस समय दीन अवस्था में, दीन यानी दुखी, कृष्ण दुखियों की मदद करते हैं, कृष्ण दीननाथ दीन बंधु। अगर आप अपने आप को दीन मानते हो तो कृष्ण की कृपा जल्दी मिल जाती है। तो बोल रहे हैं हे प्रभु हे परम कृपालु स्वामी हे मथुरा पति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे, कदावलोक्य से, आपके दर्शन नहीं होने के कारण मेरा हृदय अस्थिर हो गया, मैं क्या करूं, इस तरह से प्रार्थना करूं। और चैतन्य महाप्रभु जी श्लोक बोलते हैं, एक्सटसी में आ जाते हैं, हुंकार करिए, हुंकार करते हैं, हरी हरी हुंकार करे, हाथे कांडे नाचे गाय, वो हंसते हैं रोते हैं और गाते हैं, और फिर उनके मन से एक ही शब्द निकलते हैं, आई दीन आई दीन आई दीन, और श्लोक को याद करने लगते हैं और उनके कंठ से और कुछ नहीं आता, उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि आसपास के लोग बहुत सारे देख रहे हैं, गोपीनाथ के पुजारी सुनने लगते हैं कौन आ गया ये व्यक्ति, इसलिए अपने आप को कंट्रोल करते हैं। मेरे पुजारी जो 12 मटके होते हैं खीर के, सब के सब लेकर आते हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए। चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि मेरे पास 4 भक्त हैं, गोविंद नित्यानंद जगदानंद मुकुंद और दामोदर, ये 4 भक्त हैं और मैं स्वयं, तो 5 मटके लेते हैं और बाकी 7 ईमानदारी से वापस कर देते हैं। महाप्रभु दिखाते हैं कि भक्त को लोभी नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने पहले खीर खा लिया था, मिलने से पहले ही पुजारी लाके जो उससे पहले खा लिया था, वो कैसे, गोपीनाथ के रूप में भगवान ने पहले से स्वीकार कर लिया था। नाम संकीर्तन से ही रात्रि गुवाईला, और पूरी रात चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन में बिताई, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। मंगल आरती देखे प्रभाते सलील लागीला, तो मंगल आरती करके वो निकल पड़े। कविराज गोस्वामी आश्वासन देते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं, श्रद्धा युक्त है सुने जेई जन, ये जो कथा है इसमें 2 चीज पता चलती है, भक्त का भगवान से प्रेम और भगवान का भक्त से प्रेम, कि भक्त कितना प्रेम कर रहे हैं कि भगवान के लिए कुछ भी करने के तैयार हैं, उनको जगन्नाथपुरी जाना है, पैदल चल के जाना है, 80-40 किलो उठाना है, उनको मालूम ही नहीं कि असिस्टेंट मिलेगा, ये तो भगवान की कृपा से मिल गया, 40 किलो उठाना है 1500 किलोमीटर बहुत मुश्किल है, लेकिन वो प्रेम है, बर्डन ऑफ लव बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेम का बोझ, प्रेम का बोझ, ये भक्त का प्रेम। और भगवान का क्या प्रेम है, कि भगवान नहीं चाहते थे उनको कष्ट हो, इसलिए भगवान ने उनको बोला आप यहीं पे जो चंदन है वो यहीं पर अर्पण कर दो। और दूसरा चीज है जो दिखाता है भगवान का प्रेम, कि भगवान अपने भक्त के लिए खीर चोरी करते, भगवान अपने भक्त के लिए वचन को तोड़ देते हैं, भीष्मदेव के लिए अर्जुन के लिए, ऐसे दयालु भगवान है, उनको छोड़कर और किसकी भक्ति आप करना चाहोगे, कृष्ण की भक्ति करने की, कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं, दुनिया में कोई आपसे रेसिप्रोकेट नहीं करता, आप अभी सेवा कर रहे हैं, हमको संसार में रहते हुए बहुत लोगों की सेवा करनी होती है लेकिन वास्तव में कोई हमारी मदद नहीं करे, कृष्ण सिर्फ कृष्ण सिर्फ कृष्ण। भगवान स्वयं बोलते हैं, अहम ही भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूँ, साधु नम हृदय मयम, साधु मेरे हृदय में है और मैं साधु के हृदय में, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कविराज गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं कि जो भी कथा को ध्यान से सुनते हैं, श्री कृष्ण चरण से पाए प्रेम धन, तो श्री कृष्ण चरण की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के चरण कमल के हृदय में जाता है। 2 मिनट आंख बंद करके इन सब महात्माओं से प्रार्थना करें, माधवेंद्र पुरी परमेश्वरी दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य स्वयं भगवान राधा रमन, इनसे प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में गौरंग महाप्रभु के चरण रहे और हरे कृष्ण महामंत्र गूंजता रहे। श्रील मालवेंद्रपुरी की जय, श्री परमेश्वरी दास ठाकुर की जय, श्रील श्रीनिवासाचार्य की जय, श्री राधा रमन देव की जय, उपस्थित भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।